मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 23 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दिव्यांश वघेला, आप रपर गुजरात से हैं, देवी सिंह घोसी, आप जय सिंह नगर मध्य प्रदेश से हैं, नूतन सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, आशुतोष कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और नेहा सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो दीवान सिंह, देवी सिंह, नूतन, आशुतोष और नेहा, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसके बाद मैं आप सबकी ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से 3 स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूंगा। ये 3 स्टूडेंट्स हैं, उनमें पहले स्टूडेंट हैं हमारे अशोक कुमार जो हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं, जो हमारे 6th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट हैं अनामिका शर्मा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, जो हमारे 6th बैच की आप भी स्टूडेंट रही हैं। और तीसरे स्टूडेंट हैं कुश कुमार गौर जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं, जो हमारी क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे हैं लेकिन डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट वो रेगुलर तरीके से सुन रहे हैं। तो मित्रों इन तीनों स्टूडेंट्स ने यूपीपीसीएस का भी जो प्री एग्जाम हुआ था वह क्वालिफाई किया है। तो अशोक, अनामिका और कुश, आप तीनों को हम सब की तरफ से इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां और मेंस और इंटरव्यू में सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स आइए अब इसके बाद हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं और आज मुख्य विषय के तहत मैं अराजकता पर कुछ बातें करूंगा लेकिन इससे पहले हम न्यूज थोड़ी सी देख लें। इनफैक्ट सच पूछे फ्रेंड्स तो आज न्यूज में कुछ खास बात करने के लिए है नहीं। कल आपने न्यूज सुनी होगी, डीडी न्यूज देखी भी होगी, आपने देखा कि अभी दावोस में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए हैं और जहां विश्व आर्थिक मंच की बैठक हो रही है उसकी बहुत ही डिटेल में खबर दी गई थी, बहुत ही उस पर लंबी वार्ता भी हुई। और इसके बाद जो अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो एशियन कंट्रीज के जो मेहमान आ रहे हैं भारत के मुख्य अतिथि के रूप में, तो एशियन कंट्रीज के साथ जो भारत के संबंध हैं, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इन पर काफी बातें होती रही और मुझे लगता है कि ये दोनों डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे अगर आपने सुने हो तो। और अगर नहीं सुना है मित्रों तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इसे सुनिए ही सुनिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि प्लीज कोशिश कीजिए कि आप डीडी न्यूज को न छोड़े। मैं हर सप्ताह में एक बार करीब करीब इस बात की आप लोगों को याद दिला ही देता हूं। तो इससे जुड़ी हुई खबरें थी तो वो हमारे लिए अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, प्रतीक्षा की मांग कर रही हैं, दावोस सम्मेलन कंप्लीट हो जाए तब फिर हम इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज के अखबारों में है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि एक संस्था है ऑक्सफैम, उसने एक डेटा जारी किया है, डेटा और भी है, उसने जो डेटा जारी किया है मित्रों बहुत चौंकाने वाली डेटा है और मुझे लगता है कि ये आपको नोट भी कर लेना चाहिए। भारत के संदर्भ में उसने कहा है कि सन 2017 में यानी कि पिछले साल भारत में जितनी भी संपत्ति का सृजन हुआ, जो भी कमाई हुई, जो भी संपत्ति बनी, उसका 73% जो वेल्थ क्रिएट हुआ, 73% वेल्थ 1% लोगों के खाते में गया, मतलब 1% लोगों ने 73% वेल्थ हासिल की। कल्पना करके देखिए कि 1% लोगों के हाथ में 73% वेल्थ, विश्व के मामले में तो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। विश्व के मामले में 82% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास, भारत तो थोड़ा सा कह लीजिए कि कम है उससे। दोस्तों ये क्या है, इस आंकड़े का आप उपयोग कैसे करेंगे? देखिए आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस के पेपर उठा करके देखिए, आपको हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली रूप से उदारीकरण पर मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन पर मिलेगा, एक मिलेगा ही। अब आप देखिए कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, या भारत भी जब ये बात करता है कि FDI आए, हमारे यहां विदेशी निवेश आए, इंडस्ट्री लगे, उदारीकरण हो, हम अपने बाजार को खोल रहे हैं, दुनिया के बाजार में हम जाएं, अभी आफ्टर ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो दावोस सम्मेलन में गए हैं, वहां वो दुनिया के सामने यही रखने जा रहे हैं कि भारत में आइए और पूंजी लगाइए, उद्योग लगाइए, मेन पर्पज तो यही है। तो हमने 90 से इसकी शुरुआत की है और आज 27 साल पूरे हो गए हैं। 27 साल में हमने क्या पाया और आगे भी हम क्या पाएंगे, खासकर इस रूप में कि हम जो संपत्ति, जिस संपत्ति का हम सृजन कर रहे हैं, उसका अधिकांश हिस्सा तो उस 1% लोगों के पास जा रहा है जो पहले से ही लखपति, करोड़पति और अरबपति हैं। तो फिर जो ये नीचे का तबका है जिसे हम गरीब वर्ग कह रहे हैं, उसका विकास कैसे होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा है। तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं तो खामी है, मतलब आर्थिक विकास की दर हमारी बढ़ जाएगी। देखिए हम अनुमान ही लगाया गया है कि 7.4% इस बार रहेगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 7.8% होने की संभावना व्यक्त की गई है, वो भी कल के न्यूज में आपने देखा होगा, DD न्यूज पर यह खबर थी। तो इस रफ्तार से तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा तैयार हो रहा है, जो संपत्ति तैयार हो रही है, आ रहा है, जो धन बन रहा है, वो जा किसके पास रहा है, उनके पास जिनको सही मायने में उपयोगिता की दृष्टि से इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर विकास कैसे होगा, समानता कैसे आ पाएगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और पूरी दुनिया के सामने ये प्रश्न है, और मुझे लगता है कि उसको तार्किक रूप से सिद्ध करने के लिए यह बहुत अच्छा डेटा भी है। इसके बाद मित्रों, एक अखबार में एक एडिटोरियल कमेंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, राष्ट्रीय सहारा का, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि जैसे कोई महिला किसी दूसरे जाति के व्यक्ति से शादी करती है, तो इससे उस महिला की जाति बदल नहीं जाती है। खासकर ये इस संदर्भ में आया है कि एक लड़की थी जो अग्रवाल लड़की थी, और उस अग्रवाल लड़की ने एक जाटव लड़के से शादी की। जाटव लड़की से जब शादी की तो उसने फिर, चूंकि जाटव जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं, तो उस लड़की ने अपने लिए भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र ले लिया ताकि उसको रिजर्वेशन का लाभ मिल सके, ये मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके सार पर जाइएगा, और बल्कि ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, रेफरेंसेस होते हैं जो आपके उत्तर को मजबूत बनाते हैं और करंट से भी जोड़कर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जाति का जो निर्धारण होता है वो जन्म से होता है, विवाह से नहीं होता। तो जन्म से जो जिस जाति का है वह उसी जाति में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऊंची जाति का कोई व्यक्ति है और निम्न जाति की लड़की से शादी कर ले, या निम्न जाति के लड़के से शादी कर ले तो फिर वो उसे निम्न जाति का लाभ मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए महिला अधिकार के संदर्भ में भी और भारतीय परंपरा के को खंडित करने के संदर्भ में भी, क्योंकि हमारे यहां जनरली यही होता है ना कि लड़की जब दूसरी जाति में जाती है तो फिर वो उसी जाति की कहलाने लगती है, वो अपना सरनेम बदल देती है। इसीलिए मैंने नारी अधिकार के संदर्भ में भी इसकी बात आपके सामने रखी है। मित्रों, अखबार में एक शब्द आया है, QIP, बिजनेस स्टैंडर्ड में बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है ये, और उसमें यह कहा गया कि QIP की कतार में बहुत सी कंपनियां या बहुत से बैंक, यानी QIP की कतार में बहुत से लोग लगे हुए हैं, आने वाला है। तो ये QIP क्या है, इसे थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न आजकल प्री में खासकर पूछे जाते हैं। क्यू का मतलब है क्वालिफाइड, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्यू का मतलब है क्वालिफाइड, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्था, और पी का मतलब है प्लेसमेंट, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। संस्था तो आप जानते हैं, एक तो व्यक्ति होता है, दूसरा संस्था होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना व्यापार कर रहा हूं तो ये मेरा अपना व्यापार है, लेकिन मैं कंपनी बना करके अगर व्यापार कर रहा हूं तो वो एक संस्था बन जाएगी जिसमें दूसरे बहुत से लोग हैं, मैंने शेयर उसके जारी किए हुए हैं, तो मेरी संस्था में बहुत से लोग भागीदार हो जाते हैं। तो ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है मित्रों, इसे आप कैपिटल या पूंजी जुटाने का एक टूल्स कह सकते हैं, एक माध्यम, एक उपकरण कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस के लिए पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। शेयर से का क्या करते हैं, शेयर जब हम जारी करते हैं तो शेयर के जरिए हमारे पास पैसा आ जाता है, उस पैसे से हम अपने व्यापार को बढ़ाते हैं या उद्योग लगाते हैं। यह भी उसी तरह का है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्या होता है, कैसे होता है, समय कम होने की वजह से मैं उसमें विस्तार से नहीं जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि इतना आपके लिए सफिशियंट भी है। इससे जो भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे आप अनुमान से सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। मित्रों आइए अब हम आज के मुख्य विषय पर बात करते हैं, वो है अराजकता। मैंने ये विषय क्यों चुना है, शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों चुना है। देखिए जब हम अराजकता की बात करते हैं तो इसकी सिचुएशन क्या होगी। अराजकता वैसे हम सब जानते हैं है ना क्या होती है, लेकिन देखिए एक सिस्टम में, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम में हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास एक संविधान है, राइट। संविधान में बताया गया है कि व्यवस्था कैसे काम करेगी, ठीक है। जो व्यवस्थापिका है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, वो संविधान के अनुसार फिर काम करती है, संविधान को लागू करती है, या संविधान के जरिए जो विधायिका जो कानून बनाती है उसको फिर हमारी व्यवस्थापिका लागू करती है। और तीसरा होता है न्यायपालिका, राइट। न्यायपालिका अगर किसी को कोई एतराज है तो फिर वो न्यायपालिका के पास जाता है। अगर हम व्यावहारिक रूप में बात करें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि राज्य जो व्यवस्थापिका हो गई वो राज्य हो गया, यानी कि प्रशासन हो गया, ठीक है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अराजकता के संदर्भ में तो हमारे अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य दिए हुए हैं, और इसके बाद है न्यायपालिका। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, राज्य, अधिकार और न्याय, अब ये तीन शब्दों में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप देखिए कि अराजकता विषय मैंने क्यों लिया, वो इसलिए कि अभी आपको उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे पद्मावत फिल्म के संदर्भ में। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पद्मावत फिल्म एक ऐतिहासिक चरित्र पर बनी, भारत के एक समूह को इसका इतराज हुआ, इस पर इतराज हुआ कि शायद उस फिल्म में जो चरित्र है उसके माध्यम से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, कोशिश की गई है, राइट। चलिए ठीक है, इसके बाद उसी फिल्म को जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है जिसे आप प्रशासन का हिस्सा मानेंगे, उसने देखा, जो सेंसर बोर्ड है यहां, उसने देखा, केवल उसी ने नहीं देखा, पहली बार ऐसा हुआ कि उसने एक इतिहासकारों का ग्रुप बनाया, उसमें अलग अलग लोगों को लिया और उनको भी दिखाया कि देखिए कि कहीं इसमें इतिहास से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। उसने भी देखा, उसने कुछ सजेशन के साथ उसे पारित कर दिया और फिर सेंसर बोर्ड ने कुछ सजेशन देते हुए कहा कि फिल्म को दिखाया जा सकता है, और सेंसर बोर्ड के आदेशों का पालन फिल्मकार ने किया, उसमें उसने वह परिवर्तन कर दिए और पद्मावती फिल्म का नाम बदल करके सेंसर बोर्ड के निर्देश के अनुसार पद्मावत भी कर दिया गया। यानी कि जो संस्था के आदेश थे, संस्था का सम्मान फिल्मकार ने किया, एक कलाकार ने किया, राइट। लेकिन इसके बाद भी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने कहा कि वो फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे, कुछ राज्यों ने कहा, ठीक है। उसके विरोध में जो फिल्मकार है, जो कलाकार है, सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, फिल्म को प्रदर्शित होने से नहीं रोका जा सकता, राइट। ये कहने के बावजूद अब जो राज्य है, जो प्रशासन है, वो कह रहे कि नहीं, बहुत मुश्किल है, वो फिर से अपील कर रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ग, जो दबाव समूह इसका विरोध कर रहा है कि हम फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे, अब आप देखिए कि वो न्यायालय से थोड़े से बचाव के लिए वो जनता का कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जनता के बायकॉट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखबारों में देखिए सिनेमा घर वालों को धमकियां मिल रही हैं, आंदोलन उसके खिलाफ शुरू हो गए हैं, धरने शुरू हो गए हैं, दुनिया भर की चीजें शुरू हो गई हैं। मित्रों अब सवाल यह है कि अगर इस तरह के जो अनौपचारिक समूह हैं इसके सामने अगर राज्य सरेंडर कर दे, राज्य कहे कि नहीं हम तो भैया कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, कानून पारित हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय उसे सही ठहरा सकी चुकी है, और अगर ये दबाव समूह उस सर्वोच्च न्यायालय की बात को भी नहीं मान रहे हैं। अब आप दो चीज देखिए, न्यायालय के जजमेंट को भी नहीं मान रहे हैं, राज्य उनके सामने समर्पित कर चुका है, वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, तो इसके बाद जो सिचुएशन बनेगी वो किसकी सिचुएशन होगी? वो अराजकता की सिचुएशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्म बना रहा है या जो उपन्यास लिख रहा है, जो कहानी लिख रहा है, या जो कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, कोई नाटक तैयार किया जा रहा है, तो किसी न किसी के थीम पर तो होगा। अगर पॉलिटिक्स पर कोई फिल्म बनाई जा रही है तो उसको फिर संसद और विधानसभा से पारित कराया जाए, फिर सेंसर बोर्ड को खत्म कर दिया जाए, फिर इन्हीं से पारित करा लिया जाए। पुलिस के ऊपर अगर कोई फिल्म बन रही है तो वो डायरेक्टर जनरल पुलिस को दिखाया जाए एक बार कि भैया आप देख लीजिए। अगर किसी औद्योगिक शोषण पर दिखाई जा रहा है तो फिर उद्योगपतियों के संगठन को दिखाया जाए कि भैया आप देख लीजिए इसमें ठीक ठाक है कि नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अराजकता क्रिएट हो जाएगी। और सच पूछे तो इस अराजकता को रोकने के लिए ही राज्य की व्यवस्था कायम की गई है। तो मित्रों, मैंने अभी सोचने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वक्त इतना नहीं है कि मैं इसे और आगे बता सकूं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस विषय पर सोचिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं 2017 के मेन्स में पूछे गए प्रश्न से, जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर चार है। भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को, यहां राजनीतिक प्रक्रम का वही मतलब होगा, स्टेट शब्दों को समझना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा, इसलिए मैंने अभी विस्तार से आपको शब्दों के अर्थ समझाने की कोशिश की है। भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? और यहां जो दबाव समूह है वो सिविल सोसाइटीज हैं और एनजीओज हैं, और नो डाउट ये सब के सब दबाव समूह हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह, अब देखिए आप अनौपचारिक दबाव समूह आपको लेना होगा, ये अनौपचारिक दबाव समूह है जिसकी हमने अभी बात की है, औपचारिक दबाव समूह की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? ये ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे, अब उनकी शक्ति को आप देख रहे हैं कि राज्य तक उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, राइट? मित्रों, तो चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है, पूछने का तरीका थोड़ा सा उलझाने वाला है, वो क्या पूछना चाह रहा है आपको समझना होगा, और इसमें क्या क्या लिखना है ये भी आपको समझना होगा, तब जाकर के आप इसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। और सच पूछिए तो मैं डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आपके अंदर इसी क्षमता को पैदा करने की एक छोटी सी विनम्र कोशिश करने में मित्रों लगा हुआ हूं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लेंगे। और अराजकता को लेकर के नव दुनिया ने एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, वो भी मैं आपको दे रहा हूं। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, समर्थ मेनरिया तातारमाला राजस्थान से, शशि शेखर, सुब्रत नारायण, श्वेता कुमारी, सुरजीत मिश्रा उत्तर प्रदेश से, और सैयद वसीम अहमद। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।